Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 सच्चिदानन्द भगवान् की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु देव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद का विचार चल रहा है। नचिकेता और उनके पिता वाजश्रवस के बीच में व्यवहार चल रहा है। जब नचिकेता ने देखा कि हमारे पिताश्री विश्वजित यज्ञ में निरुपयोगी गऊं का ऋत्विजों और ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं और इस प्रकार का दान करने का जो फल है स्वर्ग न मिल करके उसका प्रतिफल ही प्राप्त होगा, इसलिए पिता के प्रति एक आस्तिक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ और भाव में आकर के विचार करके बोलने लगा कि पिताश्री आप सर्वस्व दान दे रहे हैं तो जो अपना माना जाता है उसको सभी को दान दिया जाता है, ऐसी स्थिति में मैं भी आपका हूं, आप मुझे किसको दान में देंगे। कल सुन रहे थे आप लोग, एक बार दो बार और तीन बार जब नचिकेता ने वही बात पूछी जो पिता की भावना के अनुरूप नहीं था, बड़ी ठेस लगी कि ये क्या बोल रहा है, इसी के लिए तो मैंने उपयोगी गांवों को रखा है, स्वयं अपने को दान में जाने की बात बोल रहा है, बड़ी ठेस लगी। इसलिए क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के बोल दिया कि मर्त्यवे त्वाद दामी, तुझे मृत्यु को देता हूं, इस बात को सुन करके भी नचिकेता कितना गंभीर है, इसको उल्टे रूप में नहीं लिया कि पिता क्रोध में आकर के मुझे कहते हैं तुझे मृत्यु को देता हूं, अपितु उसमें भी विचार करने लगा कितने पिता के प्रति श्रद्धा भावना है। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिन ही विचार कर ही शुभ जानी। विचार किया कि पिताश्री बोल रहे हैं कि तुम्हें यमराज को देता हूं, तो निश्चित रूप से कोई ऐसा कार्य आ गया होगा जो मेरे से पूरा करवाना चाहते हैं। एकांत में बैठ करके विचार किया वो कौन सा कार्य है जिसको मैं ही कर सकता हूं, इसीलिए कि मेरे पिताश्री के बहुत सारे शिष्य गण हैं और उन शिष्य गणों में कुछ ऐसे हैं जिनमें मेरी प्रथम श्रेणी में गिनती होती है, कुछ ऐसे हैं जहां पर द्वितीय श्रेणी में मेरा नाम लिया जाता है, परंतु तृतीय श्रेणी में मेरा कहीं भी स्थान नहीं है। मैं तो प्रथम और द्वितीय तक हूं, तो ऐसे मुझसे मेरे पिताश्री कौन सा काम करवाना चाहेंगे जिसको मैं ही कर सकता हूं। ऐसा विचार किया और विचार करने के बाद जब पिता की ओर देखते हैं वापस लौट करके, तो पिताश्री के चेहरे पर उदासी है, अप्रसन्नता है, वाजस्रवस को ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे बोल तो दिया कि तुम्हें यमराज को देता हूं। एक बार और आपको निवेदन कर दूं कि यम शब्द को लेकर के कल किसी मान सज्जन ने पूछा कि यम ये स्वर्ग में रहते हैं, यम और धर्मराज दो नाम से जिसको कहते हैं यमराज और धर्मराज, ये पद दो नहीं है, पद तो एक ही है पर एक ही पदासीन व्यक्ति को दो नाम से कहा जाता है। पुण्यात्मा पुरुषों के लिए धर्मराज के नाम से बोल देते हैं और जो नियमन करने वाले हैं संयमन करने वाले हैं इस दृष्टि से उनको यमराज बोल देते हैं। धर्म का कार्य करने वाले को धर्म फल प्रदान करते हैं इसलिए धर्मराज बोल देते हैं और सबका नियमन करते हैं इसलिए यमराज बोल देते हैं, संयमन करने वाले। तो ये जो यमराज है उसके पास जाने के लिए पिता ने मुझे बोल दिया, मगर इनका मुखमंडल बता रहा है कि आवेश में बोल दिया था, वो गलती से मैंने बोल दिया था, कहीं पूर्व में जैसे यमराज के पास चला गया था कहीं फिर वापस न चला जाए। मैंने दिल से नहीं बोला है कि तुमको यमराज को देता हूं, वो बोलने वाला तो कोई और था। पता चलता है जब क्रोध उतर जाता है चला जाता है और क्रोध में कही हुई बात को यदि कभी सामने वाला व्यक्ति विनोद में कहता है आप तो मुझे ऐसा बोल रहे थे, आप हंस करके कहोगे अरे अरे मैं तुमको ऐसा नहीं बोल रहा था, वो बोलने वाला तो गया, मैंने नहीं बोला था। किसने बोला? क्रोध ने बोला था। यद्यपि वाजस्रवस का जो क्रोध है इससे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक टिकने वाला नहीं था। तीन प्रकार का क्रोध होता है, आप लोगों को कैसा आता है वो तो आप जानो, परंतु होता है तीन प्रकार का। एक क्रोध होता है पानी की लकीर के जैसा, क्रोध की झलक आती है, आता हुआ दिखाई पड़ता है, उसका थोड़ा सा रूप मालूम पड़ेगा, परंतु क्रोध आया और चला गया, टिका नहीं, पानी की लकीर के जैसा। पानी के अंदर ऐसे अंगुली डाल करके खींचो वो पानी में लकीर तो बनेगी परंतु पीछे से साफ होती आती है। दूसरा क्रोध होता है धूल मिट्टी की लकीर के जैसा। धूल बालू मिट्टी जो होती है उसमें आप अंगुली से लकीर खींच दो और जो ही हवा चलेगी वो बालू मिट्टी उड़कर के आएगी और उस लकीर को भर देगी, पाट देगी। दूसरे दिन आप जाकर के देखेंगे तो लकीर मिलेगी नहीं। तीसरा क्रोध होता है लोहे की लकीर के जैसा। किसी लोहे के ऊपर यदि लकीर बना दी जाए तो वो लकीर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस लोहे को गर्म करके घन हथौड़े से अच्छी तरह से पीटा न जाए, वो लकीर बनी रहेगी। ऐसे ही किसी किसी व्यक्ति का जो क्रोध होता है वो पानी की लकीर के जैसा आया और चला गया। किसी का क्रोध होता है वो बालू मिट्टी की लकीर के जैसा। क्रोध आ रहा है, दो व्यक्तियों में आपस में कहा सुनी हो रही है, दोनों के चेहरे लाल लाल हो रहे हैं, दोनों की वाणी अंगारे उगल रही है, परंतु इतने में यह हुआ कि ट्रन से वेल बजी, लगा कोई बाहर आया हुआ है। दोनों व्यक्तियों को अपनी इज्जत का ख्याल है, यह घर की लड़ाई है, दरवाजे से बाहर तक नहीं जानी चाहिए। कोई व्यक्ति आया है यदि देखेगा और उसको पता चलेगा तो बाहर बात बाहर चली जाएगी। संभलता है व्यक्ति, अपने आप को जरा ठीक ठाक करके और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोला तो देखा उनका बहुत पुराना परिचित घनिष्ठ मित्र आज बहुत दिनों के बाद आपके घर पर आया है। उसको देखते ही व्यक्ति मुस्कुरा देता, ओह आइए आइए, आज क्या बात, रास्ता भटक गए, बहुत दिनों के बाद में मिलना हुआ, आइए बैठिए, क्या लेंगे, चाय लेंगे, दूध लेंगे, कॉफी लेंगे, और उस प्रिय मित्र की सत्कार में आप लग जाते हैं। वो जो क्रोध आ रहा था दो मिनट पहले, वो बाहर का व्यक्ति आया, प्रसंग बदल गया, हवा चेंज हुई और क्रोध गायब हो गया। ऐसे किसी का क्रोध आता है जब तक दूसरी परिस्थिति, दूसरा संयोग, दूसरी जवाबदारी कुछ ना आ जावे तब तक क्रोध रह सकता है, परंतु अन्य संयोग की हवा जब लगती है तो क्रोध की लकीर शांत हो जाती है। और किसी किसी को तो ऐसा क्रोध आता है, हे राम बचावे, जब तक शेर को सवा शेर न मिले, अच्छी तरह से धुनाई पूजा न हो जाए, वो क्रोध जाने का नाम ही न ले। नचिकेता के पिताश्री को भी क्रोध आया है, वाजस्रवस को क्रोध आया, लेकिन पानी की लकीर के जैसा क्रोध अचानक आ गया और बोल दिया था कि तुझे मृत्यु को देता हूं, लेकिन वो क्रोध चला गया। और क्रोध जाते ही अपने मुंह से निकले हुए शब्दों पर विचार आने लगा, मैंने मेरे प्रिय लाल को क्या बोल दिया, वो पूर्व में भी यमराज के पास चला गया था, ये तो मेरा लाडला प्यारा है, इसको मैं यमराज के पास नहीं भेजूंगा। इतने में तो बालक लौट करके पिता के पास में आया, उनका मुखमंडल बता रहा है कि यमराज को देने की बात बोलने पर भी भेजने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में वो बालक नचिकेता अपने पिता से निवेदन करता है, पिताश्री, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने मुंह से निकली हुई बात को सत्य सिद्ध कर दे, उसको अन्यथा न करें, उसका अक्षर से पालन करें। बुद्धिमान व्यक्ति का यही कर्तव्य है, सत्यम ब्रूयात, सत्याद न प्रमदितव्यम आदि आदि। सत्य बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए जो बदले नहीं, और उससे कभी प्रमाद भी नहीं करना चाहिए। पिताश्री, सत्य व्यक्ति का धर्म है, सत्यम वदंतम आहु धर्मम वदति, धर्मम वदंतम आहु सत्यम वदति। उपनिषद का अन्यत्र एक वाक्य आया है कि व्यक्ति जब सत्य बोलता है तो लोग कहते हैं कि देखो ये धर्म की बात बोल रहा है। धर्मम वदंतम आहु सत्यम वदति थी, और जब वो धर्म की बात करता है तो लोग कह रहे हैं सत्य बोल रहा है। सत्य और धर्म दोनों एक दूसरे की आत्मा है, इसलिए धर्म का त्याग माने सत्य का त्याग है और सत्य का त्याग माने धर्म का त्याग है। इसलिए पिताश्री व्यक्ति को कभी सत्य रूप धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो अपनी वाणी से निकला है उसका पालन होना ही चाहिए, ये व्यक्ति का अपना धर्म है। इसलिए आप मुझे यमराज को देने की बात की है तो सहर्ष मुझे यमराज के पास भेजना ही चाहिए, परंतु फिर भी पिता का मुखमंडल स्वीकृति देने की तैयारी में दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वो नचिकेता अपने पिताश्री को कितने सुंदर बात बोल रहा है, जरा देखिए। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमेव मृत्यः पच्यते सस्यमेव आजायते पुनः। पिताश्री, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, दो दृष्टि से नचिकेता यहां पर पिता को निवेदन कर रहा है। आप इस बात की फिक्र चिंता छोड़ दीजिए कि मेरे पुत्र का वियोग हो जाएगा, ये मृत्यु को प्राप्त होगा, इसकी फिक्र छोड़ दीजिए। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति हुआ है जो शरीर से अमर रहा हो? पूर्वजों को देखिए, कितने हुए हैं, आए हैं, चले गए, और जैसे पूर्वज गए हैं नाम मात्र रह गया है, शरीर चले गए, मगर इतना सत्य है कि जिनका अच्छा कर्म था, सत्य पालन था, उनका यश रह गया, और जिन्होंने सत्य का त्याग किया है उनका अपयश रह गया है। ये आप देखिए, यश जीवन अपयश मरण कर देखो सब कोई, क्या लंकापति ले गया क्या कर्ण दे गया कोई। संसार में जिस व्यक्ति का यश है उसका जीवन है, शरीर रहे या न रहे, परंतु वो व्यक्ति यश रूप से विद्यमान है। और जिस व्यक्ति का अपयश है वो चाहे शरीर युक्त हो, भले ही शरीर चला गया हो, वो तो मुर्दाई है, अपयश है उसका, मृत्यु है उसकी। गीता में भगवान कहते हैं अकीर्ति मरणादपि तिरिच्यते, अकीर्ति है, अपयश है, वो तो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए यश और अपयश ही जीना और मरना है। शरीरों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। पूर्वजों को देखिए, जिनका यश है आज भी जीवन है। कर्ण की महिमा है कि दानवीर हुआ, और रावण का नाम है इसलिए कि धर्म का त्याग किया, अनर्थ किया, पाप किया, तो आज भी वो रावण अपकीर्ति के रूप में देखा जा रहा है। और जब दशहरा आता है तो वो शरीर नहीं तो काल्पनिक शरीर बनाकर के भी दुर्दशा की जाती है। वो राजस्थानी में एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, कहे दास सगराम बड़ों का बेर न छूटे, बीत गया जुग चार नकल कर करने कूटे, नकल कर करने कूटे डाले धूल उछार, ऋणा कुश मुजरो कहो रावण कहो जवार। जिसका यदि अपयश है तो आज भी व्यक्ति उसके पुतले बना बना करके जला रहे हैं। रावण आदि की स्थिति देख लीजिए। इसलिए व्यक्ति को अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। शरीर नहीं रहेगा मगर यश अपयश रह जाता है। प्रतिपश्य तथा अपरे, और दूसरों को भी आप देखिए, वर्तमान में भी जो शिष्ट पुरुष हैं, आदरणीय पुरुष हैं, उन पुरुषों का आप जीवन देखेंगे तो अपने धर्म का त्याग नहीं करते हैं। तैतरीय उपनिषद में जब आचार्य अपने ब्रह्मचारी का समावर्तन संस्कार कर रहे हैं, उस वक्त कहते हैं कि यानि अस्माकम सुचरितानि ताने त्वया उपास्यानि नो इतराणि। जो श्रेष्ठ पुरुषों के, हम लोगों के गुरुजनों के सद आचरण है, वो सद आचरण ही तुम्हें, तुम्हारे लिए आचरणीय है, उपासना करने योग्य है, जीवन में धारण करने योग्य है। जो असद पुरुषों का किया हुआ कर्म है वो तुम्हारे लिए ग्राह्य नहीं है। इसलिए वर्तमान में भी जो शिष्ट पुरुष है उनका जीवन देखो। एक दृष्टि से कहा कि अमुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, पहले वालों के भी शरीर नहीं रहे, मान यश अपयश उनका रह गया है, और वर्तमान में जो है उनका भी यश रह जाएगा, शरीर सबका जाने वाला है, और उन्हीं की महिमा है जो अपने धर्म का आचरण करते हैं, सत्य का पालन करते हैं। इसलिए पिताश्री उनको देखिए, पहले वालों को, वर्तमान को भी देखिए, जैसे शिष्ट पुरुष आचरण करते हैं वैसे करना चाहिए। और एक दृष्टि से कहा कि पूर्वज जो हो गए, शरीर उनका भी नहीं रहा, और अन्य संसार में जितने हैं सब के सब प्रतिपल काल के गाल में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अर्जुन गीता के 11वें अध्याय में विराट दर्शन में देखता है कि बड़े बड़े शूरवीर भी भगवान श्री कृष्ण के मुख के भीतर में, और मोह पे ऐसा है कोई धधकती हुई ज्वाला हो, और उसके अंदर प्रज्वलित मुखों के अंदर बड़े बड़े शूरवीर प्रविष्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और भगवान सबको अपने भीतर में ग्रहण करते जा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि इस महाकाल के भीतर सबका प्रवेश होते जा रहा है। वर्तमान में देखिए कोई रहने वाला नहीं है। पिताश्री देखते 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 बाल्यकाल चला गया, युवावस्था चली गई, और वार्धक्य भी दौड़ा जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यह मृत्यु की ओर जाना यह तो स्वभाव है, इसको लेकर के डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव आजायते पुनः है। सोचिए क्या है मृत्यु, आविर्भाव तिरोभाव मात्र ही तो है, सर्वता अभाव तो नहीं हो रहा है। इसलिए मृत्यु कोई डरने की चीज नहीं है, मृत्यु तो एक ऐसी चीज है जैसे आपकी सुषुप्ति अवस्था, आपकी नींद, जबकि वहां जाकर के ही व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो निद्रा को त्यागने का साहस कर सके। अन्य सब कुछ छोड़ा जा सकता है लेकिन निद्रा का त्याग संभव नहीं है, और यदि किसी ने गलती से निद्रा त्याग का संकल्प कर लिया तो पागल हो जाएगा, अन्यत्र शांति मिल ही नहीं सकती है। तो जैसे सुषुप्ति अवस्था में, उस गहन निद्रा में हर व्यक्ति जाकर के भी आनंदित होता है, एक बिना विषय का स्वाभाविक आनंद अनुभव करता है, तो जैसे सुषुप्ति में जागृत अवस्था से गया हुआ व्यक्ति एक आनंद का अनुभव करके और फिर जागृत अवस्था में आ जाता है, क्या बिगड़ गया उस निद्रा अवस्था में उसका, बल्कि बड़ी शांति पाकर के आ रहा है। देख लो, ये जो संसार का जीना और मरना है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस शरीर में व्यवहार करते 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 जब बहुत बड़ी थकान हो गई और शरीर भी काम का नहीं रह गया, तो जैसे प्रतिदिन सोते हैं वो भी एक चिर निद्रा है, चिर निद्रा बोलते हैं, गहरी नींद में, लंबी नींद में सो गया, परंतु ये निश्चित है कि सोया हुआ कहीं न कहीं जागेगा, अवश्य उसको जागृति प्राप्त होनी है। तो मृत्यु क्या चीज है, क्यों डरने का? उदाहरण दे रहे हैं, शस्यमेव मर्त्यः पच्यते, जैसे अनाज की फसल जो होती है, गेहूं धान आदि की फसल,